श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 16 दैवी तथा आसुरी स्वभाव श्लोक क्रमांक 1, 2, 3 की तात्पर्य की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अगला गुण दान है। दान गृहस्थों के लिए है। गृहस्थों को चाहिए कि वे निष्कपटता से जीवन यापन करना सीखें और कमाई का 50% विश्व भर में कृष्ण भावनामृत के प्रचार में खर्च करें। इस प्रकार से गृहस्थ को चाहिए कि ऐसे कार्य में लगे संस्थान समितियों को दान दें। दान योग्य पात्र को दिया जाना चाहिए, जैसा आगे वर्णन किया जाएगा। दान भी कई तरह का होता है, यथा सतोगुण रजगुण तथा तमोगुण में दिया गया दान। सतोगुण में दिए जाने वाले दान की संस्तुति शास्त्र ने की है, लेकिन रजगुण तथा तमोगुण में दिए गए दान की संस्तुति नहीं है, क्योंकि यह धन का अपव्यय मात्र है। संसार भर में कृष्ण भावनामृत के प्रसार हेतु ही दान दिए जाना चाहिए, ऐसा दान सतोगुणी है। वैसे तो इसकी चर्चा आगे की जाएगी, लेकिन छोटा सा यह संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि सतोगुणी व्यक्ति या सतोगुणी दान में व्यक्ति ये जानता है कि दान कर क्यों रहा है और इस धन का उपयोग कौन करेगा और उसे कैसे करेगा। ऐसा नहीं है कि आंख मूंद करके हम किसी को भी दान दे दें और उससे हमको और उस व्यक्ति को दान का लाभ प्राप्त होगा। एक और बात है कि गृहस्थ के जीवन में धन कमाने के लिए कुछ ना कुछ पाप करना ही पड़ता है। ईमानदारी से भी करे फिर भी कुछ ना कुछ पाप होता है, तो दान करने से वह शुद्ध होता है। और ये बात मूलभूत है कि मनुष्य जीवन चित्त को अस्तित्व को शुद्ध करने के लिए है। आपने एक लाइन इसमें जरूर देखी होगी और बहुत आश्चर्यजनक लगा होगा कि हम 50% अगर अपना धन का कमाई का भगवान को दे देंगे तो हम जिएंगे कैसे। सिद्धांत यह है कि 25% में हमें जीने की कला सीखनी चाहिए। जितना हम कमाते हैं उसमें से केवल 1/4 ही हमें जीने के लिए आवश्यक है, और ये तभी कोई व्यक्ति जी पाएगा जब वह अपने जीवन की आवश्यकताओं को एकदम न्यूनतम कर दे। यदि आप 50% से शुरू नहीं कर सकते तो कम से कम 10% तो देना ही चाहिए। वहां से धीरे धीरे बढ़ा करके 50% की तरफ अग्रसर होना चाहिए। ये शास्त्र का वचन है और इस प्रकार से अगर हम करते हैं तो कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। अन्यथा जो धन कमाया है वह तो यही रह जाएगा और मृत्यु के बाद उसको कमाने में जो पाप किया है वह सर पे हम ढो करके अगले जन्म में उसको लेके जाएंगे। और ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो भी दान व्यक्ति करता है अगर योग्य पात्र को देता है तो अगले जन्म में हजारों लाखों गुना वापस आता है, और अगर भगवान के लिए दिया तो फिर वही धन उसकी मुक्ति का कारण बन जाता है। भगवान इस बात को 9वें अध्याय में समझा चुके हैं कि अगर दान करना है तो मुझको करो, यानी कृष्ण को करो, यानी कृष्ण के प्रतिनिधि को करी ताकि वो कृष्ण की सेवा में लगाए, और इसके द्वारा व्यक्ति मुक्त होने का अधिकारी बन जाता है, भगवत धाम प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। तो दान के द्वारा भी हमारा बहुत बड़ा शुद्धिकरण होता है, और मुख्यतः यह है गृहस्थों के लिए संस्तुत किया जाता है क्योंकि वही धन कमाने का कार्य करते हैं और उसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए होता है। सोचिए अगर पूरे समाज में हर व्यक्ति इस प्रकार से जीवन जिए कि अपनी कमाई का 50% वो भगवान की सेवा में लगा दे तो जीवन ये समाज कितना अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसके विपरीत हर व्यक्ति यही इसी प्रयास में लगा हुआ है कि कैसे वो और अधिक भोग कर सकता है और वस्तुओं को इकट्ठा कर सकता है। इसकी चर्चा तो भगवान आगे भी बताएंगे। ये आसुरिक प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति और अधिक संग्रह करने की प्रवृत्ति से ग्रसित रहता है। जहां तक दम या आत्मसंयम का प्रश्न है, यह धार्मिक समाज के अन्य आश्रमों के लिए नहीं है अपितु गृहस्थ के लिए विशेष रूप से है। अन्य आश्रमों के लिए ही नहीं है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि नहीं है, मतलब केवल उनके लिए नहीं। बहुत बार लोग इस तरह से सोचते हैं, हम तो गृहस्थ हैं और सोचते हैं इस प्रकार से कि भोग का लाइसेंस मिल गया है और हमें इंद्रिय संयम करने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि उसकी पत्नी होती है लेकिन उसे चाहिए कि व्यर्थ ही अपनी इंद्रियों का विषय भोग की ओर न मोड़े। गृहस्थों पर भी मैथुन जीवन के लिए प्रतिबंध है और इसका उपयोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए किया जाना चाहिए। यदि वह संतान नहीं चाहता तो उसे अपनी पत्नी के साथ विषय भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। आधुनिक समाज माथन जीवन का भोग करने के लिए निरोध विधियों का या अनगृहणित विधियों का उपयोग करता है, जिससे संतान का उत्तरदायित्व न उठाना पड़े। यह दिव्य गुण नहीं अपितु आसरी गुण है। यदि कोई व्यक्ति, चाहे वह गृहस्थ ही क्यों ना हो, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, तो उसे अपने मैथुन जीवन पर संयम रखना होगा और उसे ऐसी संतान नहीं उत्पन्न करनी चाहिए जो कृष्ण की सेवा में काम ना आए। यदि वह ऐसी संतान उत्पन्न करता है जो कृष्ण भावना भावित हो सके, तो वह सैकड़ों संतानें उत्पन्न कर सकता है। लेकिन ऐसी क्षमता के बिना किसी को इंद्रिय सुख के लिए काम भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस, ये सारी जो आज्ञाएं हैं, आजकल के समाज के लोगों को बहुत खराब लगेंगी और कहेंगी ये तो बहुत ही रूढ़िवादी बातें हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है या समस्या ये है कि लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। इस प्रकार के तथाकथित भोग या भोगों से उत्पन्न सुख, ये तो सुअरों को भी प्राप्त होता है। तो अगर इनके ही पीछे जीव इंसान भागता रहा तो उसको तो बहुत बड़ा घाटा लग गया। आत्म साक्षात्कार का सुख जो होता है वो अनंत होता है, लेकिन इसके लिए जीव को, हमको तपस्या करके अपने हृदय को शुद्ध करना होता है। तो उस तपस्या में संलग्न ना होकर के व्यक्ति अगर भोगों के पीछे भागता रहेगा तो उसको बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। जिस मानव जीवन से उसको इतना बड़ा सुख प्राप्त हो सकता था, उसको केवल भोग में लगा देने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से दुख का भागी बनेगा। तो इसीलिए सब ये सारे नियम बताए गए हैं जो कि स्पष्ट है। संतान उत्पत्ति के लिए ही कहीं अगर व्यक्ति कोई पत्नी का संग करता है तो वह गृहस्थ ब्रह्मचारी कहला जाता है, और अगर उसको संतान उत्पत्ति की इच्छा नहीं है तो उसको भी पत्नी से भी संग नहीं करना चाहिए। तो कहेंगे ये तो कोई पागलपन की बात होगी, लेकिन पागलपन की बात नहीं है। जितना इंद्रियां विषय भोगों से दूर उठेंगी, उतना ही दूर हटेंगी, उतना ही भगवान की सेवा में लगने का मौका मिलेगा। बहुत सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है कि अगर कोई पूर्व दिशा में जा रहा है तो वह पश्चिम दिशा में नहीं जा सकता। एक ही समय में दो विभिन्न दिशाओं में जाने वाली नावों पर हम सवार नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति सोचे कि मैं आध्यात्मिक जीवन में प्रगतिशील होना चाहता हूँ और मैं इंद्रिय तृप्ति में भी लगा रहना चाहता हूँ, तो ये संभव नहीं है। इसीलिए ये सब कठोर नियम लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता है और मुख्य रूप से हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, तो स्वाभाविक रूप से उसके लिए ब्रह्मचारी का जो जीवन है वो सहज हो जाता है। गृहस्थों को यज्ञ भी करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ के लिए पर्याप्त धन चाहिए। ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम वालों के पास धन नहीं होता, वे तो भिक्षाटन करके जीवन जीवित रहते हैं। अतएव विभिन्न प्रकार के यज्ञ गृहस्थों के दायित्व है। उन्हें चाहिए कि वैदिक साहित्य द्वारा आदिष्ट अग्निहोत्र यज्ञ करें, लेकिन आजकल ऐसे यज्ञ अत्यंत खर्चीले हैं और हर किसी गृहस्थ के लिए इन्हें संपन्न कर पाना कठिन है। इस युग के लिए संस्तुत सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। यह संकीर्तन यज्ञ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप सर्वोत्तम और सबसे कम खर्च वाला यज्ञ है और प्रत्येक व्यक्ति इसे करके लाभ उठा सकता है। अतएव दान, इंद्रिय संयम तथा यज्ञ करना, ये तीनों बातें गृहस्थ के लिए हैं। वैसे हरे कृष्ण मंत्र का यज्ञ जो है वह तो सभी आश्रमों के लिए है, लेकिन गृहस्थों का खूब इससे लाभ उठा लेंगे, क्योंकि अन्य यज्ञ करने के लिए सामग्री और पुरोहितों की आवश्यकता होती है जो कि इस समय अब उपलब्ध नहीं है। लेकिन कहीं भी व्यक्ति बैठ सकता है या लोगों को एकत्रित करके, यानी अकेले या फिर एक साथ मिल करके भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करके वह शुद्ध हो सकता है। तो ये प्रभुपाद अच्छा बात बता रहे हैं। और गृहस्थों का भी कर्तव्य है कि इस हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करें। शाम को आके टीवी देखने की बजाय टीवी को तो बाहर ही फेंक देना चाहिए, और उसकी जगह अपने घर में लोगों को आप न्योता दें और लोगों को बुला करके भगवान का संकीर्तन करें। इस प्रकार से हमारा खुद का अस्तित्व शुद्ध होगा और अन्य लोग भी शुद्ध होंगे। इसके लिए अगर धन खर्च करना पड़े तो वह भी एक यज्ञ है, यानी कि संकीर्तन के लिए या संकीर्तन को का प्रचार प्रसार करने के लिए अगर हम कुछ धन का उपयोग करते हैं तो वह भगवान की सेवा में नियोजित यज्ञ कहलाता है। अब स्वाध्याय के बारे में बात हो रही है। स्वाध्याय या वेदाध्ययन ब्रह्मचर्य आश्रम या विद्यार्थी जीवन के लिए है। ब्रह्मचारियों का स्त्रियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए। उन्हें ब्रह्मचर्य जीवन बिताना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन हेतु अपना मन वेदों के अध्ययन में लगाना चाहिए। यही स्वाध्याय है। इसको हमने पहले भी चर्चा किया था कि ब्रह्मचारी आश्रम सारे आश्रमों का आधार है। उस समय स्वाध्याय क्यों आवश्यक है? मुख्य रूप से क्योंकि वेदाध्ययन के द्वारा व्यक्ति समझ पाता है मानव जीवन के मूल्यों को और समझ पाता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, ज्ञान क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, भक्ति की प्राप्ति कैसे होगी, भगवत प्राप्ति कैसे होगी, और उस ज्ञान के आधार पर ही आगे चल के वह गृहस्थ या वानप्रस्थ या संन्यास के जीवन का सही सही पालन कर सकता है। इसीलिए यहाँ बोला जा रहा है कि जो ब्रह्मचारी हैं उनके लिए मुख्य रूप से स्वाध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि आगे के आश्रमों की नींव तैयार हो सके। तो इसलिए कोई आश्रम में रह करके अगर भगवान की भक्ति कर रहा है, साथ साथ अगर भक्ति शास्त्रों को नहीं पढ़ता है, तो उसके लिए ब्रह्मचारी का जीवन यापन कर पाना मुश्किल बात है। तपस्या वानप्रस्थों के लिए है। मनुष्य को जीवन भर गृहस्थ नहीं बने रहना चाहिए, उसे स्मरण रखना होगा कि जीवन के चार विभाग हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। अतएव गृहस्थ रहने के बाद उसे विरक्त हो जाना चाहिए। यदि कोई 100 वर्ष जीवित रहता है तो उसे 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष तक गृहस्थ, 25 वर्ष तक वानप्रस्थ तथा 25 वर्ष तक संन्यास का जीवन बिताना चाहिए। यह वैदिक धार्मिक अनुशासन के नियम है। गृहस्थ जीवन से विरक्त होने पर मनुष्य को शरीर, मन तथा वाणी को का संयम बरतना चाहिए, यही तपस्या है। समग्र वर्णाश्रम धर्म समाज ही तपस्या के निमित्त है। तपस्या के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। इस सिद्धांत की संस्तुति ना तो वैदिक साहित्य में की गई है, ना भगवद गीता में, कि जीवन में तपस्या की आवश्यकता नहीं है। और कोई कल्पनात्मक चिंतन करता रहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे सिद्धांत तो उन दिखावटी अध्यात्मवादियों द्वारा बनाए जाते हैं जो अधिक से अधिक अन्यायी बनाना चाहते हैं। यदि प्रतिबंध हो, विधि विधान हो, तो लोग इस प्रकार आकर्षित ना हो। अतएव जो लोग धर्म के नाम पर अन्यायी चाहते हैं, वे केवल दिखावा करते हैं। वे अपने विद्यार्थियों के जीवन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते और ना ही अपने जीवन पर, लेकिन वेदों में ऐसी विधि की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। हमने इसे पहले चर्चा किया था कि गृहस्थ जीवन में भोग की कुछ छूट मिलती है, तो जब जीव उसमें कोई भोग करता है तो वह भोग का संस्कार उसके चित्त पे रहता है। तो संन्यास आश्रम में जाने से पहले उसको अपने चित्त को साफ करना पड़ेगा, और इसीलिए वानप्रस्थ जीवन में वह पत्नी के संग रह सकता है, लेकिन मैथुन जीवन का कोई प्रश्न नहीं होता, अपितु दोनों ही लोग, पति और पत्नी दोनों ही एकनिष्ठ भाव से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगते हैं, और इसके द्वारा उनके चित्त की सफाई होती है, और फिर आगे जाके पति संन्यास ग्रहण करने की योग्यता को प्राप्त कर सकता है। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि इतने सारे विधि विधानों का उद्देश्य यही है क्यों दिए गए हैं, क्योंकि चित्त की सफाई इतनी आसानी से होती नहीं है। अनादि काल से जीव जगत में है और उसने अनादि काल से भोग किया है, तो भोग के सारे संस्कार इकट्ठे हैं चित्त के ऊपर। तो इस कारण से ऐसा तपस्यामय जीवन मानव जीवन में बोला जा रहा है, जिसमें इंद्रिय लगातार भगवान की तरफ जुड़ी रहें, भगवान की सेवा में लगी रहें, ताकि बहुत जल्दी चित्त का मार्जन हो और भगवान के धाम जाने के योग्य हो जाए। जैसे कोई मजे में पढ़ाई करके IAS क्वालिफाई नहीं कर सकता, उसी प्रकार से भगवत प्राप्ति के लिए कुछ तपस्या तो आवश्यक है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वह तपस्या बहुत आसान कर दी गई है। केवल महामंत्र का जप करना है और हमें चार नियमों का पालन करना है। अवैध संग नहीं करना है, मांस नहीं खाना है, अंडा इत्यादि नहीं खाना है, चाय नहीं पीनी है, शराब इत्यादि नहीं पीना है, और जुआ नहीं खेलना है। तो अगर ये चार हम प्रतिबंधों से बचें, प्रतिबंधों का पालन करें, पाप ना करें और भगवान का नाम जप करें, भगवान का प्रसाद ग्रहण करें, तो बड़ी आसानी से भगवान के धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि हम लोग ये कार्य करने में इतने प्रतिबंधों का पालन करने को भी बड़ा भारी मानते हैं, जबकि जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है, वह अपने जीवन में अनुभव करता है कि जीवन में एक ठंडक आ गई, ठंडक का अनुभव करता है, और जो हृदय में जलन है वो समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से अगर हमने तपस्या में जीवन जिया तो भगवत प्राप्ति करना आसान होगा। तो यहां तक हमने आश्रमों के दिव्य गुणों के बारे में सुना, अर्थात ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास के विभिन्न दिव्य गुण क्या हैं। अब हम लोग वर्णों के दिव्य गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रभुपाद जी के तात्पर्य के अनुसार, जहां तक ब्राह्मणों की सरलता या आजवम का संबंध है, इसका पालन न केवल किसी एक आश्रम में किया जाना चाहिए, अपितु चारों आश्रमों के प्रत्येक सदस्य को करना चाहिए, चाहे वह ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा अथवा संन्यास आश्रम में हो। मनुष्य को अत्यंत सरल तथा सीधा होना चाहिए। तो आर्जवम का अर्थ है ईमानदारी, जिसका अर्थ है कि जो श्रद्धालु श्रोता हैं उनसे महत्वपूर्ण विषयों के अर्थ को छुपाना नहीं चाहिए और जैसा सुना है वैसा ही प्रस्तुत करना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है किसी जीव के प्रगतिशील जीवन को ना रोकना। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए क्योंकि शरीर के वध किए जाने के बाद भी आत्मस्फुलिंग नहीं मरता, इसलिए इंद्र तृप्ति के लिए पशुवध करने में कोई हानि नहीं है। प्रचुर अन्न फल तथा दुग्ध की पूर्ति होते हुए भी आजकल लोगों में पशुओं का मांस खाने की लत पड़ी हुई है, लेकिन पशुओं के वध की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आदेश हर एक के लिए है। जब कोई विकल्प न रहे तभी पशुवध किया जाए, लेकिन इसकी यज्ञ में बलि की जाए। जो भी हो, जब मानवता के लिए प्रचुर भोजन हो तो जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार में प्रगति करने के इच्छुक हैं उन्हें पशु हिंसा नहीं करनी चाहिए। वास्तविक अहिंसा का अर्थ है कि किसी के प्रगतिशील जीवन को रोका ना जाए। पशु भी अपने विकास काल में एक पशु योनि से दूसरी पशु योनि में देहांतरण करके प्रगति करते हैं। यदि किसी विशेष पशु का वध कर दिया जाता है तो उसकी प्रगति रुक जाती है। यदि कोई पशु किसी शरीर में बहुत दिनों से या वर्षों से रह रहा हो और उसे असमय ही मार दिया जाए तो उसे पुनः उसी जीवन में वापस आकर शेष दिन पूरे करने के बाद दूसरी योनि में जाना पड़ता है। अतएव अपने स्वार्थ की तुष्टि के लिए किसी की प्रगति को नहीं रोकना चाहिए, यही अहिंसा है। और ध्यान देना चाहिए कि जिस प्रकार से पशु का वध करते हैं तो उन्हें अगले जीवन में पशु बनना पड़ेगा और वह पशु उसे काटेंगे, तो ये बहुत ही गंभीर बात है। साथ से साथ अहिंसा का अर्थ ये भी है कि जीव की कृष्ण भावना मृत को ढकने का प्रयास करना या उसके निमित्त कारण बनना। इस संबंध में फिल्म बनाने वालों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जीव ऐसे ही कृष्ण से विमुख है और वो ऐसे दृश्य प्रस्तुत करते हैं कि जीव की हृदय में काम और जागृत हो जाए। या फिर हम इस प्रकार से अगर वस्त्र पहने जिससे अन्य लोगों के चित्त में काम वासना बढ़ जाए तो यह भी उनके प्रति हिंसा है। तो इसलिए क्यों? क्योंकि उनकी चेतना दूषित होती है इस प्रकार से। तो अहिंसा का एक अर्थ तो आप देख ही रहे हैं कि किसी जीव को वध करना, और बाकी अन्य अर्थ भी देखा कि किसी की कृष्ण भावना की प्रगति में रोकना, और साथ साथ कृष्ण भावना का ज्ञान होने के बावजूद भी प्रचार ना करना, यह भी बहुत बड़ी हिंसा है। ये कृष्ण मात्र भगवान भावना का ज्ञान एकमात्र वस्तु है जो जीव को कल्याणमय चीज है, जिसके द्वारा वह भगवत प्राप्ति कर सकता है। तो यदि मेरे पास ज्ञान है और उसके बावजूद मैं दूसरों को ना दूं तो मैं हिंसा का पालन कर रहा हूं, और ऐसा व्यक्ति भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकता है। सत्यम का अर्थ है मनुष्य को अपने स्वार्थ के लिए सत्य को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। वैदिक साहित्य में कुछ अंश अत्यंत कठिन है, लेकिन उनका अर्थ किसी प्रमाणिक गुरु से जानना चाहिए। वेदों को समझने की यही विधि है। श्रुति का अर्थ है किसी अधिकारी से सुनना। मनुष्य को चाहिए कि अपने स्वार्थ के लिए कोई विवेचना ना गढ़े। भगवद्गीता की अनेक टीकाएं हैं जिसमें मूल पाठ की गलत व्याख्या की गई है। शब्द का वास्तविक भावार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उसे प्रामाणिक गुरु से ही सीखना चाहिए। दो प्रकार के अर्थ होते हैं, एक कहते हैं अभिधा वृत्ति और दूसरा होता है गौण वृत्ति। अभिधा वृत्ति का मतलब होता है सीधा अर्थ। जब सीधा अर्थ स्पष्ट हो तो गौण अर्थ, जो कि इनडायरेक्ट मीनिंग है, उसको नहीं लेना चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि मुझे पानी चाहिए, तो अब ये इसका जो अर्थ है वो स्पष्ट है, तो अब इसमें कोई विवेचना करने की जरूरत नहीं है कि प्रभु जी को पानी नहीं चाहिए, इन्हें दूध चाहिए या उन्हें कुछ और वस्तु चाहिए। सीधे सीधे बोलना चाहिए, हाँ इन्हें ये पानी मांग रहे हैं, इन्हें पानी देना चाहिए। लेकिन जब भी कभी कभी इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं कि वह तो सिंह के समान है, वह सिंह के समान है, इसे कहने का अर्थ ये है कि वह बहुत वीर है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वह सिंह के समान दिखता है। तो यहाँ पे हम सीधा अर्थ नहीं लेंगे, हम इसका जो गौण अर्थ है वह लेंगे। लेकिन भगवद्गीता में हमें गौण अर्थ लेने की जरूरत नहीं है। भगवद्गीता में भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं कि वही भगवान है, हम उनके अंश हैं, हम उनके सेवक हैं, हम उनकी सेवा करनी चाहिए उनका, और बहुत सारी बातें बोल रहे हैं। तो इस उन अर्थों को ना लेकर के अगर कोई गौण अर्थ लेता है, इनडायरेक्ट अर्थ लेता है, तो ये सत्यम का पालन नहीं है और ये असुरिक प्रवृत्ति के कारण होता है। जैसे भगवान बोल रहे हैं कि सारे धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में जाओ, तो लोग बोलते नहीं कृष्ण की शरण में नहीं जाना है, किसी शिव बाबा की शरण में जाना है या और किसी व्यक्ति की शरण में जाना है या ब्रह्म की शरण में जाना है। तो ये सारी बातें जो है इस सत्यम का पालन नहीं है, अपितु झूठम है। तो ये इस प्रकार का जो गुण है ये आसुरी गुण कहलाता है। और अगर कोई सत्यम का पालन करता है, जैसी वस्तुएं हैं जैसा शास्त्र में लिखा है वैसा यथावत उनको लोगों को बताता है, तो सत्य का पालन कर रहा है और इससे वो लोगों का बहुत बड़ा कल्याण कर सकता है। प्रायः समाज में लोग इस प्रकार की बातों को दो कारणों से गड़बड़ करते हैं। एक कि वो खुद जानते नहीं, जब वो खुद नहीं जानते हैं तो वह प्रामाणिक लोगों के पास जाकर के विनम्रता से पूछने की बजाय अपनी विवेचना को प्रस्तुत करते हैं जिसका कोई आधार नहीं है, और इस कारण से ऐसे व्यक्ति के जीवन में स्वयं कोई परिवर्तन नहीं होगा और उसकी वाणी के द्वारा अन्य लोगों का भी कल्याण नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग पूर्ववर्ती आचार्यों की परंपरा में प्राप्त ज्ञान को हो सीधे सीधे प्रस्तुत करते हैं तो सत्यम का पालन होगा, उससे हम स्वयं भी शुद्ध होंगे और दूसरे लोगों को भी शुद्ध कर पाएंगे। अक्रोध करते हैं क्रोध को रोकना। यदि कोई शुद्ध बनावे तो भी सहिष्णु बने रहना चाहिए, क्योंकि एक बार क्रोध करने पर सारा शरीर दूषित हो जाता है। क्रोध तमोगुण से उत्पन्न होता है और जैसे हम लोग सो जाते हैं तो हमारा शरीर अशुद्ध हो जाता है, मुर्दे की तरह माना जाता है। इसी प्रकार से क्रोध करने से हमारा शरीर जो है वो तमोगुण से सन जाता है या दूषित हो जाता है और हमारी चित्त जो है दूषित हो जाता है। तो इसलिए व्यक्ति को क्रोध से बचने का प्रयास करना चाहिए। क्रोध रजोगुण तथा काम से उत्पन्न होता है। जब हमारी भौतिक इच्छा पूर्ति नहीं होती या कोई हमारी भौतिक इच्छा में बाधा डालता है तो हम क्रोधित हो जाते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि क्रोध जो है वो रजोगुण से उत्पन्न होता है। अतएव जो योगी है उसे क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, और उसका सरल तरीका है जब क्रोध आए तब वाणी को शांत कर लें। अगर उस समय हम वाणी के वेग को शांत कर लेते हैं, चुप हो जाते हैं या सामने से हट जाते हैं, तो क्रोध कुछ समय के बाद शांत हो जाएगा। जैसे कि एक आंधी होती है, वो आंधी शांत हो जाती है। अपैशुनम का अर्थ है कि दूसरे के दोष ना निकाले और व्यर्थ ही उन्हें सही न करे। निसंदेह चोर को चोर कहना छिद्रान्वेषण नहीं है, लेकिन निष्कपट व्यक्ति को चोर कहना उस व्यक्ति के लिए परम अपराध होगा जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है। बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर कोई व्यक्ति निरपराधी है, गलत नहीं किया है और उसका हम निंदा करते हैं तो उसका सारा पाप हमारे सर पर चढ़ जाएगा। तो ये हमारी खुद के ही पापों को हम मैनेज कर लें तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए दूसरों के पाप इकट्ठा करना का बोझा नहीं ढोना चाहिए। इस संबंध एक बड़ा अच्छा एक साधु बोलते हैं कि एक माता अपने बच्चे का मल अपने हाथ से साफ करती है, अपनी जीभ से साफ नहीं करती है, लेकिन जो दूसरों की निंदा करता है वह दूसरे के मल को अपने जीभ से साफ कर रहा है। तो ये इतना खतरनाक है, हमें समय लगता नहीं है, लेकिन दूसरों की निंदा सुनना, निंदा करना, ये हमारे लिए, हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत खतरनाक है। तो इसलिए इससे बचना चाहिए। हिरी का अर्थ है मनुष्य अत्यंत लज्जाशील हो और कोई गर्हित कार्य ना करे। यानी कि अगर कुछ उसे गलत कार्य हो जाए तो उसके हृदय में बहुत कहना चाहिए, लज्जा आनी चाहिए कि मुझसे हो कैसे गया, और बुरा कार्य करने में पहले से ही शर्म आनी चाहिए, झिझक होनी चाहिए कि वो बुरा कार्य ना हो उससे। तो ये सब जो अगर किसी के जीवन में हैं गुण तो उसके जीवन में देवता का गुण है। अचापलम या संकल्प का अर्थ है कि मनुष्य किसी प्रयास से विचलित या उदास ना हो। किसी प्रयास में भले ही असफलता क्यों ना मिले किंतु मनुष्य को उसके लिए खिन्न नहीं होना चाहिए, उसे धैर्य तथा संकल्प के साथ प्रगति करना चाहिए। अर्थात निश्चयता, दृढ़ता, कोई भी वस्तु तुरंत प्राप्त नहीं होती है। स्पेशली बहुत कोई बड़ा उद्देश्य लेके चल रहा है तो तुरंत उसकी सफलता नहीं मिलती है, तो उसके लिए धैर्य के संग प्रयासरत रहना चाहिए। इसको भगवान गीता में एक जगह बोलते हैं, योगो निर्विण चेतसा, जो वो उखड़ ना जाए, प्रयासों को बंद ना करे अगर तुरंत सफलता नहीं मिलती है। यहां पर प्रयुक्त तेजस शब्द क्षत्रियों के निमित्त है। क्षत्रियों को अत्यंत बलशाली होना चाहिए जिससे वे निर्बलों की रक्षा कर सकें, उन्हें अहिंसक होने का दिखावा नहीं करना चाहिए। यदि हिंसा की आवश्यकता पड़े तो हिंसा दिखानी चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति अपने शत्रु का दमन कर सकता है उसे चाहिए कि कुछ विशेष परिस्थितियों में क्षमा कर दे, वह छोटे अपराधों के लिए समाधान कर सकता है। तो ये बहुत सुंदर उत्तर प्रभुपाद सुंदर व्याख्या कर रहे हैं कि व्यक्ति को शक्तिशाली होना चाहिए और शत्रुओं को दमन करना चाहिए, लेकिन कोई अगर हीन व्यक्ति है और उससे कुछ गलती हो जाती है तो क्षत्रिय का ये स्वभाव भी है कि उसे क्षमा करते हैं अगर वो शरण में आ जाता है। शौचम का अर्थ है पवित्रता, जो न केवल मन तथा शरीर की हो अपितु व्यवहार में भी हो। यह विशेष रूप से वर्णिक वर्ग के लिए है, उन्हें चाहिए कि वे काला बाजारी न करें। तो यानी कि शौचम जो शब्द था वह वैश्य वर्ग के लिए है। शौचम अद्रोह नाति मान्यता, ठीक है, नाति और अद्रोह का मर्त भी हमने समझाया था। अद्रोह का अर्थ है कि ये शस्त्र लेकर दूसरों का हनन नहीं करना चाहिए, उन पर हिंसा नहीं करनी चाहिए। शस्त्रों का उपयोग केवल क्षत्रियों के लिए है, वैश्यों के लिए नहीं है, इसलिए अद्रोह का गुण भी उनमें होना चाहिए। नाति मान्यता अर्थात सम्मान की आशा न करना शूद्रों अर्थात श्रमिक वर्ग के लिए है, जिन्हें वैदिक आदेशों के अनुसार चार वर्णों में सबसे निम्न माना जाता है। उन्हें वृथा सम्मान या प्रतिष्ठा से फूलना नहीं चाहिए बल्कि अपनी मर्यादा में बने रहना चाहिए। शूद्रों का कर्तव्य है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए वे उच्च वर्गों का सम्मान करें, उच्च वर्णों का सम्मान करें। तो अर्थात उसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए ताकि वर्णाश्रम धर्म की जो व्यवस्था है वो बढ़िया से चल सके। बहुत स्पष्ट है, ऐसा नहीं कि शूद्रों को आप भगवद गीता दे देंगे तो उसे पढ़ने ही लग जाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि वो पढ़ने लग जाएंगे तो समझ भी पाएंगे, और ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ थोड़ा बहुत समझे तो वो प्रचार भी कर पाएंगे। ये सहज वृत्ति ब्राह्मणों के पास है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो भगवान को प्रिय नहीं हो सकते। मंदिर का मार्जन कर सकते हैं या भगवान के लिए पेड़ उगा सकते हैं, फल उगा सकते हैं, और वह भी भगवान धाम जाने के योग्य हो जाएंगे। जैसे भगवान कृष्ण बलराम जब मथुरा गए तो सुदामा नाम के एक मालाकार ने, जो कि शूद्र वर्ण के ही कह लेंगे तो वहां थे, उनके भगवान के लिए माला बनाई तो भगवान ने कहा तुम इस जन्म में सुखी रहोगे और उसके बाद मेरे धाम की प्राप्ति करोगे। तो भगवान की सेवा में कोई ऊंच नीच नहीं है, लेकिन बस यही है कि कौन व्यक्ति क्या योग्यता से युक्त है और उसको भगवान की सेवा में वो नियोजित करना सीखे। यहां पर वर्णित 26 गुण दिव्य हैं। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इसका आचरण होना चाहिए। सारांश यह है कि भले ही भौतिक परिस्थितियां शोचनीय हों, यदि सभी वर्णों के लोग इन गुणों का अभ्यास करें तो वे क्रमशः आध्यात्मिक अनुभूति के सर्वोच्च पद तक उठ सकते हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और ये इन तीनों श्लोकों का सार है कि जो व्यक्ति दिस वर्ण और आश्रम का है, अगर उसके दिव्य गुणों का वह अनुशीलन करता है तो भगवान की भक्ति के लिए और दिव्य ज्ञान के लिए योग्य बन जाता है, जिससे आगे जाकर वह मुक्ति का अधिकारी बनेगा। हरे कृष्णा।